जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय संख्या 20 श्लोक संख्या 12 इस श्लोक से आप सब बहुत परिचित हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्पनम परम विच्यते श्रीकृष्ण संकीर्तनम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम देशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है, यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी विद्या का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह कृष्ण नाम हमारे द्वारा अंत्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप जानते हैं 28 सितंबर से शिला भक्तिनो ठाकुर जी के प्राकट्य महिर्भाव दिवस से पूरे विश्व भर में विश्व हरिनाम उत्सव मनाया जा रहा है और आप सब भक्तों के द्वारा बहुत उत्साहपूर्वक प्रतिदिन संकीर्तन निकाला जा रहा है और आप में से बहुत से भक्त जपथन जप मैराथन में भाग ले रहे हैं। आप में से कितने भक्त जप मैराथन में भाग ले रहे हैं? सब भक्तों ने जब की संख्या बढ़ाई है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और इसमें हमारा भी लाभ होगा और सबका भी लाभ होगा। तो आज हम ये शिष्टाष्टकम चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य आज से लगभग 525 वर्ष पूर्व हुआ और महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं और महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक हमें दिए और इन 8 श्लोक की रचना महाप्रभु ने गंभीरा में की। गंभीरा जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जहां महाप्रभु ने अपनी अंत्य लीला की और महाप्रभु के 2 बहुत आंतरिक पार्षद थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, उनके साथ बैठ के इन श्लोकों का महाप्रभु ने स्वयं आस्वादन किया और जनसाधारण को ये श्लोक दिए। इन 8 श्लोकों में सारे शास्त्रों का सार है। ये 8 श्लोक हमें बताते हैं कि कैसे श्रद्धा से प्रेम तक का विकास होता है। जब जीव भक्ति में जुड़ता है, बस जीव साधु संघ के प्रभाव से, उसमें पहले श्रद्धा होनी चाहिए और वही श्रद्धा प्रगाढ़ होते होते भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम बन जाती है। तो इस एक श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 8 तक श्रद्धा से प्रेम तक का पूरी सीढ़ियां बताई गई हैं और महाप्रभु ने यह श्लोक गंभीरा में बोला और इस श्लोक श्री भक्ति सांसद ठाकुर महाराज अपने तिरोभाव इस पृथ्वी में जाने से पहले लगभग एक सप्ताह पहले उन्होंने 10 महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। 10 महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक निर्देश हरि नाम के ऊपर था। तो शिला भक्ति हम सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं कि हर जीव को हरि नाम का अच्छे ढंग से पालन करनी चाहिए, इसका अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हरि नाम ही हमारा जीवन है और ये जो श्लोक है इस श्लोक को हमें अच्छे ढंग से समझना चाहिए। इस श्लोक की व्याख्या, पूरे शिष्टाष्टकम की व्याख्या शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी पुस्तक भजन रहस्य में की और इस श्लोक में उन्होंने संकीर्तन यज्ञ के 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई और इन 7 महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझकर एक जीव की हरिनाम संकीर्तन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। जब तक हमारा हरिनाम के प्रति और संकीर्तन यज्ञ के प्रति आकर्षण नहीं होगा हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो आकर्षण उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। तो इस श्लोक में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की 7 मुख्य विशेषताएं बताई गई है। ये जानते हैं, देखेंगे श्लोक 4 पंक्तियों में है, हर एक पंक्ति में 2 पद है। चेतो दर्पण मार्जनम एक भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। कितने पद हो गए? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। कितने हो गए? सर्वात्मस्पनम। कितने हो गए? 7। किसके हैं ये? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। 8वें पद में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। क्यों विजय हो? उनकी ये 7 विशेषताएं हैं। तो आज सीमित समय में इस 7 विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, समय बहुत कम है, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। श्री प्रभुपाद और सभी वैष्णवों से कृपा की याचना करते हुए, इस ऑर्डिनेंस भक्ति मंदिर गोई महाराज से कृपा की याचना करते हुए इस पर चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के महत्व को समझ सके। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में बहुत कृपा है। कृष्ण नाम की महिमा सभी युगों में थी। कृष्ण तो सनातन है, कृष्ण का नाम सनातन है, लेकिन कलयुग में इसकी विशेष महिमा है क्योंकि कलयुग में इस हरिनाम को देने के लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं और गौरांग महाप्रभु बताते हैं कि इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आप सबसे बड़ा धन कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य मंगल के मध्य खंड में गौरांग महाप्रभु एक दिन एक बहुत बड़े आसन में बैठ जाते हैं और सभी भक्तों को सूचित करते हैं। बोलते हैं यह संकीर्तन यज्ञ है किसी एक अन्य यज्ञ के समान है। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है उससे क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? यज्ञ करने के लिए यज्ञ कुंड की आवश्यकता होती है। तो आप बताइए इस संकीर्तन यज्ञ में यज्ञ कुंड क्या है? हमारे काम। और शिला प्रभुपाद बताते हैं भगवान ने हमारे कर्णों की रचना इस ढंग से की है, दिखने में छोटा सा छिद्र लगता है लेकिन इसके अंदर असीमित इसकी क्षमता है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है। जितना मर्जी डाल दो, यज्ञ कुंड कितना बड़ा बना लोगे, लेकिन ये ऐसा यज्ञ कुंड है, डालते जाओ असीमित क्षमता। तो ये हो गया यज्ञ कुंड। यज्ञ में आहुति देने के लिए जो उपकरण प्रयोग होता है वो क्या है? जीवा। और यज्ञ की जो सामग्री घी वो क्या है? हरिनाम, भगवान का गुणगान। तो जब इस जीवा रूपी उपकरण के द्वारा घी रूपी भगवान की गुणगान इस यज्ञ इस कुंड रूपी कानों में डाला जाता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है। कहां प्रज्वलित होती है अग्नि? हृदय में। कौन सी अग्नि प्रज्वलित होती है? प्रेमाग्नि, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है। जो प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है तो जीव के अंदर सारे के सारे भाव के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिव प्रभुपाद की। तो जब प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सारे के सारे भाव के लक्षण उत्पन्न होते हैं। रोना, कांपना, हंसना, जमीन पर लौटना, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब बहुत तुच्छ प्रकट होते हैं। और इस यज्ञ अग्नि के चारों ओर सभी वैष्णव आचार्य बैठे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए इस यज्ञ में सफलता के लिए। देखिए, और गौरांग महाप्रभु बताते हैं कि इस यज्ञ में इतनी शक्ति है कि यह सबसे बड़ा धन कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। इस कृष्ण प्रेम जो कि वृंदावन में सभी जीव इससे आप्लावित हैं और इस संकीर्तन यज्ञ की महिमा का गुणगान स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी जी, नारद मुनि और चार कुमार करते हैं। शिव जी राधा रानी के महाभाव की तो बहुत प्रशंसा करते हैं लेकिन इसका आस्वादन नहीं कर पाते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में मैं आकर इसको प्रदर्शित करता हूं और इस कृष्ण प्रेम के स्टोर कीपर भंडार की रक्षा करने वाले कौन है, बोलते हैं नित्यानंद अवधूत। और इस दिव्य धन की दिव्य देवी कौन है, वो है गदाधर पंडित। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे मेरे रत्न समान भक्तों, कृपया करके इस शब्द को अच्छे ढंग से समझ जाओ। इस शब्द को अच्छे ढंग से समझ जाए कि संकीर्तन यज्ञ की महिमा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 शब्द हैं ये जीव के ऊपर भौतिक जगत में आने के बाद 16 आवरणों को समाप्त कर देता है। जीव के ऊपर 16 आवरण कौन से हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तरह के प्राण और एक सूक्ष्म शरीर, छोटा सा सूक्ष्म जीवात्मा इन 16 आवरणों से ढका हुआ है। और ये 16 शब्दों का नाम ये कली संतरण प्रश्न में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं। 16 शब्दों का नाम जीव के 16 आवरणों को नष्ट कर देता है और जीव पूर्ण रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। किसी और योग में, किसी और ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमें कृष्ण का संग करा दे, कृष्ण का दर्शन करा दे। शिल प्रभुपाद कहते हैं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सामने बहुत भावेश होकर नृत्य करने से हम कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति है लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि हमें ये हरे नाम अपराध रहित होकर करना चाहिए। प्रेम विवृत ग्रंथ में जगदानंद पंडित बताते हैं अगर हम चैतन्य अगर हम वास्तव में भक्ति के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सब गंभीर भक्त हैं, अगर हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के जीवन और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारना चाहिए। आपा ने आचार्य प्रभु जीवे न सिखा है, महाप्रभु स्वयं भगवान है लेकिन भक्त बनकर आते हैं, तो महाप्रभु के जीवन को और महाप्रभु की शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारना चाहिए, फिर देखेंगे हम इस संकीर्तन यज्ञ का पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस संकीर्तन यज्ञ की पहली किश्त क्या प्राप्त होती है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित रूपी दर्पण का मार्जन होता है। हम प्रतिदिन इस श्लोक को गाते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय साफ हो जाता है। लेकिन आज चर्चा करेंगे इसका क्या मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। ये तो अभी इसकी पहली किश्त है, पहली किश्त है। और देखिए अगर हम सही ढंग से संकीर्तन करेंगे तो कितना ये हमें प्रेम की अवस्था तक ले जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, इसके लिए सबसे पहले चर्चा करेंगे कि चेतन चित्त क्या है और मार्जनम किसका मार्जन करता है, तो इसके लिए थोड़ा सा सांख्य योग पर चर्चा करेंगे। भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल अपनी माता देवोदी को बताते हैं कि स्थूल शरीर के अंदर एक अंतःकरण है, उस अंतःकरण के मुख्यतः चार अंग हैं, चार इंद्रियां हैं, वो है मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, चित्त। चित्त का मतलब है दूषित चेतना। हम इस संसार में भौतिक जगत में कृष्ण से विमुख होकर आनंद पाने का जो भी प्रयास करते हैं वो सारे के सारे प्रयासों की छाप इंप्रेशंस चित्त के ऊपर है और इस छापों इंप्रेशंस को संस्कार कहते हैं। यानी कि संस्कार जब से हम भौतिक जगत में आए हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादि वही मुखे, कब से आए हैं ये कोई डेट नहीं है कि डेट ऑफ फॉल डाउन कब थी जी हमारी, कोई डेट लिखी हुई ऐसी कोई डेट नहीं है। अनादि काल से जब से हम संसार में आए हैं और जब से कृष्ण को भूलकर अपने प्रयासों से इस संसार में सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं वो सारे के सारे विफल प्रयासों का रिकॉर्ड अभी तक है। हमने पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, कीड़े मकोड़े की योनि में, जलचर की योनि में, पेड़ पौधों की योनि में, मनुष्य की योनि में, देवताओं के शरीर में जो जो भोग करने के प्रयास किए हैं उन सबके रिकॉर्ड, उन सबके इंप्रेशंस चित्त के ऊपर है। और साथ साथ हमारे अनर्थ, अनर्थ का अर्थ है हमारी ऐसी इच्छाएं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो चित्त रूपी दर्पण के ऊपर ये सारी गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी है, बहुत मोटी लेयर है। कितने जन्म हो चुके होंगे हमारे, हमें मालूम नहीं, सारे सारे जन्मों में जो जो हमने कुकर्म किए हैं, भगवान को भूलकर भोगने की जो प्रयास किए हैं, वो सब के सब इम्प्रेशंस चित्त के ऊपर हैं। जब हम हरि नाम लेते हैं बिल्कुल साफ हो जाता है। और कैसे साफ होता है? हम अपने आप को देख सकते हैं और कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। आप बोलेंगे बहुत आसान सी बात है, लेकिन जब तक ये मार्जन नहीं होगा तब तक क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्योंकि जीवात्मा इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर कार्य करता है। जो मन है सूक्ष्म शरीर में, ये एक मशीन के समान है, प्रोसेसिंग एक कैमरा के समान है। और मन पांच ज्ञानेंद्रियों से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे ये हाथ का, इसको क्या बोले, पाम को क्या, ये हथेली, हथेली पांच उंगलियों से जुड़ी हुई है। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और ये हथेली मन के समान है। यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, सबका सब मन को पास चला जाता है। और मन के द्वारा ये जो इंप्रेशन चित्त पर पड़ते हैं, मन जो इसको सूचना मिलती है, ध्यानपूर्वक समझिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर भी समझना पड़ेगा। ये जो मन जो भी बाहर के वातावरण से देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, उसकी सूचना चित्त पर पड़े हुए जो संस्कार है उससे उसकी तुलना करता है। क्योंकि मन का स्वभाव है, जब जब हमें सुख मिलता है उस सुख पूर्वक अनुभव को हम रिपीट दोहराना करना चाहते हैं। एक शराबी शराब पीता है तो जैसे शराब की बोतल सामने आती है वो क्या कहता है, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए, क्योंकि उसको पीने से आनंद मिला था। किसी व्यक्ति को सिनेमा देखने का शौक है, एक सिनेमा का बिलबोर्ड देखता है, उसके अंदर क्या इच्छा उत्पन्न होती है, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? देखनी चाहिए, क्योंकि ये उसको सुखदायक अनुभव दिया था। इसलिए जो हमारे पहले के सुखदायी अनुभव हैं उसको मन दोहराना चाहेगा। तो जो मन को सूचना प्राप्त हुई वो पिछले संस्कारों से चेक करेगा, अगर अनुकूल प्रतीत होगा तो करेगा, प्रतिकूल प्रतीत होगा तो रिजेक्ट कर देगा। संकल्प विकल्प, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट। और इसी ढंग से जीव क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीव साधारणतया बद्ध जीव इसी से प्रेरित होकर निर्णय लेता है। हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, हम तो मन के राजा हैं। राजा नहीं, वास्तव में संस्कारों के गुलाम हैं, अपनी आदतों के हम गुलाम हैं। हमारी आदत पड़ गई है, हमारी प्रकृति बन गई, हम वैसे ही काम करते हैं स्पॉन्टेनियसली। कोई व्यक्ति की शक्ल हमें अच्छी नहीं लगती, चेहरा गुस्सा आ गया, गुस्सा कर दिया, क्योंकि मन ने देखा इसका चेहरा ऐसा है अच्छा नहीं है, गुस्सा कर दिया। इसका चेहरा बहुत अच्छा है, इससे आकर्षित हो गए। बस पूरा का पूरा हमारे जो कर्म होते हैं संस्कारों से प्रेरित होते हैं। इसका नुकसान क्या है? उस कर्म का रिएक्शन मिलता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप सोचिए, जब तक ये संस्कार धुलेंगे नहीं हम इस संसार से छुटकारा पा ही नहीं सकते, वो लगभग असंभव है। क्योंकि जो हम कार्य करते हैं उससे संस्कार और गहरा हो जाता है, उससे संस्कार और गहरा हो जाता है, राग और द्वेष गहरे होते जाते हैं और हमारा जो प्रकृति हमारी हैबिट्स इस तरह बनती जाती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञान वानपि प्रकृति यांतिम भूतानि निग्रहम किम करिष्यति प्रकृति यांतिम भूतानि। भगवान अर्जुन को बताने हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या होगा। प्रकृति यांति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। जो हमारे संस्कार हैं वैसे हम कार्य कर देते हैं, जैसी हमारी आदतें हैं वैसे हम कार्य करते हैं। निग्रहम किम करिष्यति, जितना मर्जी रोकने का प्रयास कर ले रोके नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, जो राग और द्वेष हैं ये आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर सबसे बड़े लुटेरे हैं, आपकी बुद्धि हर लेते हैं, हम सही निर्णय ले ही नहीं पाते और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जब हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम के माध्यम से, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ से हमें एक ऐसा अनुभव होता है कि हमें साक्षात्कार होता है कि अरे कृष्ण के नाम के साथ हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम सारे कार्य क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम आनंद पाना चाहते थे। लेकिन जब हरि नाम संकीर्तन में भक्त लोग उछलते हैं, नाचते हैं, खूब प्रसाद पाते हैं, कितना आनंद आता है ना, कितना आनंद है। फिर ये इंप्रेशन, ये संस्कार छप जाता है, अरे जब भी मृदंग सुनेगा, वेदंग वाद्य सुनित मन अवसर सदा याचे गौहर वेदव केदन सुने हृदय सदा नाचे। भक्ति ठाकुर कहते हैं, जब भी वो मृदंग के वाद्य सुनते हैं उनका हृदय नाचना शुरू कर देता है। तो हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब भक्त लोगों को देखते हैं बाहर नाच रहे हैं, दौड़ कर जाते हैं, हम भी कीर्तन में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि अब ये संस्कार छप गया है कि हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें आनंद है। नहीं तो साधारण त्या पहले यह संस्कार था भक्ति बूढ़ों के लिए, भक्ति करेंगे इंद्र तृप्ति छोड़नी पड़ेगी, सुख छोड़ना पड़ेगा, बहुत तपस्या है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। प्रसाद तो खा लो, हाँ प्रसाद खा लेंगे, प्रसाद खा लिया हाँ अच्छा लगा, इंप्रेशन बन गया। हरे कृष्णा मंदिर में आते हैं, कढ़ी चावल बड़ा अच्छा होता है, एक ठाक से इंप्रेशन पड़ गया, चलो कुछ नहीं कढ़ी चावल खाने चले जाओ। कढ़ी चावल खाए तो कभी देख रहे भक्त नाच रहे, इतना क्यों नाच रहे हैं, क्या हो क्या गया, पागल तो नहीं हो गए, कौन सी दारू पी उन्होंने, जाकर देखे ना सही। कोई व्यक्ति बाहर से आते हैं, अंदर का वातावरण अजीब सा है, सब नाच रहे हैं, इतना क्या हो गया भाई, यहां पर आते हैं उससे भी नहीं रुका जाता, वो भी नाचना शुरू कर देता है। फिर घर जाके बता, बड़ी अजीब सी बात हुई आज, मैं इतना नाचा कभी मालूम नहीं चला, अब मैं रोज आऊंगा। एक इंप्रेशन पड़ गया कि शादी विवाह के अलावा भी नाचा जाता है, अरे और बिना कोई मदिरा पान पिए भी कोई नाचता है, और किस बात की खुशी है, पता नहीं किस बात की खुशी है नाचना। तो एक इंप्रेशन पड़ जाता है कि जब ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, लोग ढोलक बजाते हैं, शुरू शुरू में ऐसे बोलते हैं, भाई क्या क्या करते हैं, नाचना अच्छा लगता है, कुछ हृदय की बात छूती है। हम सब ऐसे तो जुड़े, इंप्रेशन ऐसे तो पड़े, फिर धीरे इंप्रेशन पड़ने लगा कि यस ये संकीर्तन में आनंद है। तो जितना ज्यादा इस इंप्रेशन को हम स्ट्रांग करेंगे, धीरे धीरे जो हमारे भौतिक जगत में भोगने के इंप्रेशन हैं वो समाप्त होते जाएंगे। जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में गए थे, एलएसडी चरस गांजा पीने वाले हिप्पियों के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ, बड़े बड़े सन्यासियों योगियों के साथ नहीं, समाज के निकृष्ट लोगों के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ। आप देखिए कितनी इस आंदोलन की महिमा है, कितनी शक्ति है। उन लोगों के अंदर ये इंप्रेशन पड़ा हुआ था कि किसी भी 30 साल के ऊपर से व्यक्ति का विश्वास मत करो, जिस व्यक्ति की आयु 30 साल से ऊपर है वो सत्या गया है, वो पागल है, जो उसने बोलना है उससे उल्टा करो, ये उनके अंदर इंप्रेशन था। शिला प्रभुपाद की क्या आयु थी, 70 वर्ष, लेकिन प्रभुपाद ने प्रेम दिया, जो हिप्पीज थे प्रभुपाद की जो बैठते थे, प्रभुपाद की उनकी वाणी कुछ समझ में नहीं आती थी, प्रभुपाद का क्या एक्सेंट है, बंगाली एक्सेंट कुछ समझ में नहीं आता था, वीरेंद्र प्रभुपाद को संस्कृत भी बोलते थे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और वैसे ही इंप्रेशन है कि 30 साल से ऊपर वाला व्यक्ति बुढ़वक हो गया है, बेकार का है उसे। और देखो अब 70 साल के व्यक्ति के सामने बैठ के वो बैठे रहते थे, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद के हृदय में कृष्ण प्रेम था, और हिप्पीज को लगता था कि ये जो व्यक्ति है ये स्वार्थ रहित है, ये मेरा हितेशी है, उनके अंदर ये इंप्रेशन पड़ गया। और वो जो हिप्पीज जो 16-16 घंटे सोते रहते थे, अब 18-18 घंटे पुस्तक वितरण करने लगे। देखो कैसे बदलता है ना। नारद मुनि मृगारी के पास गए, उसका ये संस्कार था कि तड़पते हुए पशुओं को देखकर उसको आनंद आता था। देखो अपने अपने आनंद ढूंढने की अलग अलग सिस्टम है, कोई पशु तड़प रहा है, खून निकल रहा है, उसको हंसी आती थी, खूब आनंद आता था, लेकिन नारद मुनि ने थोड़ा सा प्रचार किया, उसके संस्कार बदल गए, हृदय बदल गया। तो जब हम शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तो हमारा ये जो कोयला रूपी जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। हमारा मन बहुत काला है, कोयले को कैसे हम साफ कर सकते हैं, कोई तरीका है कोयले को साफ करने का, कोई तरीका नहीं है, कोयले को केवल जला सकते हैं। तो कोयले को जलाने के लिए एक जलता हुआ कोयला चाहिए, और वो जलता हुआ कोयला होता है शुद्ध भक्त, जो कि भगवान की प्रेमा अग्नि में जल रहा है। जब हम ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं और उससे भगवान का गुणगान सुनते हैं, उसके संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो हमारे हृदय में जो संस्कार हैं वो जल जाते हैं। संस्कारों केवल जलाया जा सकता है और कुछ नहीं। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र संघ में हम कोई भी सेवा करते हैं, हमें उस सेवा को प्रभुपाद को समर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद वो शुद्ध भक्त हैं जिनके संपर्क में आके, जिनकी सेवा करके हम इस सब मन रूपी कोयले जो हमारे संस्कार हैं, इसको हम पूर्ण रूप से ध्वस्त कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो ये है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आप कोई कह सकता है प्रभु जी हम संकीर्तन में भाग भी ले रहे हैं, प्रतिदिन सेवा भी करते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बार बार हमसे वही गलती हो जाती है, जानते बुझते भी हमसे नियम टूट जाता है। एक संघर्ष करते हुए साधक ये सबसे बड़ी समस्या है, उसको समझ में नहीं आता हो क्या गया है, और उसका फिर संकीर्तन यज्ञ से धीरे धीरे विश्वास उठना शुरू कम हो जाता है, श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन भक्ति को अगर हम एक विज्ञान के रूप में देखेंगे तो हम जान पाएंगे हमारी कहां कमजोरी है और इसका क्या इलाज है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें सब कुछ विस्तार में बताया है। माधुरी कादंबरी नामक ग्रंथ में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बात बताते हैं कि भक्त के हृदय में कौन कौन से अनर्थ होते हैं। मुख्यतः अनर्थ चार कारण होते हैं अनर्थ के, दुष्कृति उठा अनर्थ, सुकृति उठा अनर्थ, अपराध उठा अनर्थ, भक्ति उठा अनर्थ। साधारण शब्दों में ये बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, 5 मिनट में थोड़ा सा बताएंगे ताकि हम इस संकीर्तन की महिमा को समझ सके। दुष्कृत और सुकृत उठा अनर्थ यानी कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य के कारण कुछ अनर्थ हो जाते हैं। अनर्थ मतलब अवांछित इच्छाएं जिसका कोई अर्थ नहीं है। हमने पूर्व जन्म के काम पाप किए तो हमारे अंदर काम क्रोध द्वेष होगा। पूर्व जन्म में कुछ पुण्य भी किए तो भोगने की इच्छा और प्रगाढ़ होगी। तो ये पाप और पुण्य से सुकृत और दुष्कृत उठा अनर्थ है। तीसरा अनर्थ होता है अपराध उठा अनर्थ। जब हम भक्ति में आते हैं अपराध करते हैं तो अपराध से भी कुछ अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अपराध से अनर्थ क्या उत्पन्न होते हैं? सेवा करने की भावना समाप्त हो जाती है, भौतिक आकर्षण बढ़ जाते हैं, भक्तों में भक्तों के संग अच्छा नहीं लगता, ये अपराध उठा अनर्थ है। भक्ति उठा अनर्थ क्या होते हैं? जब हम भक्ति करते हैं हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, यश मिलता है, पूजा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, पोस्ट मिलती है, डेजिग्नेशन मिलती है, उसको हम भोगना शुरू कर देते हैं। तरंग रंगनी, हम सोचते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा लोग हमारा गुणगान कर रहे हैं ये भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण है, हम उसको भोगना शुरू कर देते हैं, इससे भक्ति उठा अनर्थ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आप बताते हैं हरेक अनर्थ किस किस स्थिति में जाके पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। जो पाप और पुण्य सुकृत और दुष्कृत से उठे हुए अनर्थ हैं ये निष्ठा के स्टेज तक रहते हैं। तो जब तक हम निष्ठा की स्थिति में नहीं आएंगे हमारे पुराने संस्कार हमें तंग करते रहेंगे, हमसे गलतियां होती रहेंगे। निष्ठा की स्थिति में आने से ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। जो अपराध उठा अनर्थ है ये बताते हैं भक्त विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर पाद, 15% लगभग 15% भजन क्रिया की स्थिति में समाप्त हो जाते हैं, 60% लगभग निष्ठा की स्थिति तक समाप्त हो जाते हैं, और भाव की स्थिति में पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। और चौथा कौन सा बचा? भक्ति उठा अनर्थ। ये बताया गया है रुचि की स्थिति पे आके समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बताया गया येषां तु अंधकता पापा जनानां पुण्य कर्मणां त्वे द्वंद मोह मुन्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वृता। जब तक हम पूर्ण रूप से पापों से मुक्त नहीं हो जाएंगे हम भक्ति को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाप और पुण्य से उठे हुए अनर्थ निष्ठा तक हमें सताते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए एक साधक को? जब तक वो निष्ठा की स्थिति में ना पहुंचे तब तक क्या करना चाहिए? इंद्रिय विषयों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हेजुलनेस मारुति स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे हैं हमारे संस्कार जल की तरह है, इंद्रिय विषय सेंस ऑब्जेक्ट अग्नि की तरह है। जब अग्नि जल को गर्म करती है तो उसमें से भाप निकलती है और ये भाप हमारी काम वासनाएं हैं। यानी कि समझ लीजिए एक व्यक्ति भक्ति में आया, अच्छी साधना कर रहा है, पहले 16 माला शुरू करने से पहले, 4 नियम पालन करने से पहले उसको मदिरा पान की आदत थी, और जितना ज्यादा वो प्रचार करने जाता है, पुस्तक वितरण करने, मदिरा की दुकानें बार बार जाएगा तो क्या होगा? उसके जो पुराने संस्कार हैं उसको उत्तेजित करेंगे और उससे हो सकता है नियम टूट जाए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसी इंद्र विषयों से जो हमने भक्ति में आने से पहले जो इंद्र तृप्ति के हम साधन बटोरते थे उनसे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस ढंग से ढालना चाहिए। देखिए ये हरि नाम भव औषधि है। जब कोई डॉक्टर कोई औषधि प्रिस्क्राइब करता है साथ में परहेज भी बताता है तभी जो औषधि है वो पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो हमारा परहेज है हमारी जीवन शैली। तो अपनी जीवन शैली इस ढंग से करनी चाहिए कि हम पुराने संस्कारों से दूर रहें। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या छूते हैं, बहुत सावधान रहें। इससे मेरे झूठे अहंकार की गांठ और पक्की तो नहीं हो जाएगी, पहले वाले संस्कार और पक्के तो नहीं हो जाएंगे, उससे हम दूर रहे। हमें इन संस्कारों को फीका करना है और नए संस्कारों को, भक्ति के संस्कारों को गाढ़ा करना है, तो देखेंगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कोई कह सकता है हरि नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, कहां हमें निष्ठा की स्थिति तक वेट करना पड़ेगा, कहां रुचि की स्थिति में वेट करना पड़ेगा, तुरंत क्यों नहीं समाप्त हो जाते हैं? तुरंत समाप्त हो सकते हैं अगर हम अपराधों से बचे रहे। होता क्या है, एक साधक पाप भी उसके पिछले जन्म के उसको सताते रहते हैं और साथ में वो साधना करते करते तरह तरह के अपराध करता रहता है, कैजुअल हो जाता है, तरह तरह के अपराध करता है। जब अपराध करता है तो हरि नाम का जो प्रभाव है वो कम होता जाता है, इसलिए उसका संघर्ष बढ़ता जाता है। और जब इतना संघर्ष बढ़ जाता है तो वो हिम्मत हार जाता है। तो भगवान भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में उद्धव को बताते हैं, सभी संघर्ष करने वाले साधकों के लिए बहुत उत्साहवर्धक ये श्लोक है, उसका अनुवाद हम पढ़ते हैं। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों में उपकर यह जानते हुए कि सभी प्रकार की इंद्र तृप्तियां दुखदायी हैं, किंतु इंद्र भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। समझे आप क्या कह रहे हैं भगवान? कि वो जान गया कि इंद्र तृप्ति में सुख नहीं है और उसकी रुचि भी उत्पन्न हो गई भगवान की कथाओं में, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? उदास नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सुखी रहे। ये नहीं कि चलो गलतियां करते रहे, इसका अर्थ ये है उदास ना होकर उत्साहपूर्वक अपनी साधना में और लगा रहे और अच्छे ढंग से संकीर्तन यज्ञ करें, जिससे कि उसको संस्कार फीके पड़ जाएं और नए संस्कार छपे। इसलिए इस विज्ञान को हम समझेंगे तो हम फिर घबराएंगे नहीं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस संकीर्तन के माध्यम से ही हम अपने हृदय के संस्कारों को, चित्त के, चित्त मतलब अंतःकरण, बहुत गहरे छपे पड़े हैं, उनको हम धो सकते हैं। और इनको धोने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा, समाप्त, और हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त अपने मन के अनुसार चलता है क्योंकि उसके चित्त में सारे के सारे अच्छे संस्कार हैं, लेकिन हम जैसे भक्तों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो अपने जीवन को इस ढंग से ढाले कि हम पाप में कर्मों से बचे रहें। तो इसलिए बताया गया कि हमें तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रियों को संयम करना, ये सब गौण विधियां हैं अपने आप को रोकने की। संयम ये भी आवश्यक होता है जिससे कि हम सतोगुण में आकर रजोगुण में से बचे, तो इस ढंग से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पहली किश्त थी परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। दूसरा क्या किश्त है? भव महादावाग्नि निर्वापणम। अग्नि से क्या उत्पन्न होता है? ताप। ये क्या बोला गया है? दावाग्नि यानी कि जंगल की आग। एक आग को आप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, अगर जंगल में आग लग जाए कितने फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए? पूरे दिल्ली क्या पूरे संसार की अगर फायर उनको बुलाया जाएंगे हम क्या बोल फायर ब्रिगेड सारी इकट्ठी हो जाए तब भी वो जंगल की आग को नहीं बुझा सकती। दावाग्नि, और ये क्या बताया गया? महादावाग्नि, महादावाग्नि, भव महादावाग्नि। ये जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है, भव महादावाग्नि, ये बहुत ही जगत हिंसा से भरा हुआ है, इसमें अग्नि ताप ही ताप है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर हिंसा की जाती है, पहले तो उल्टा लटका रहता है, कीड़े काटते हैं उसको, कितनी हिंसा देखी है अंदर से ही, मां के पेट से ही हिंसा शुरू हो गई, अधिभौतिक क्लेश शुरू हो गए, कीड़ों ने काटना शुरू कर दिया, पूरे शरीर को कीड़े काटते हैं, कीड़ों के लिए फीस्ट है, वे तो बड़े भूखे होते हैं, और अंदर एक पूरा बच्चा आहा सबके सब चिपक जाते हैं, उसको खूब काटते हैं, बेचारा रोता रहता है, इतनी हिंसा। और जब फिर जब समय आता है निकलने का तो जो वायु होती है वो उसको पुश करती है, धकेलती है, और छोटे से स्थान से उसको बाहर निकाला जाता है धक्का मार के, और जैसे ऐसे निकलता है जैसे खून के साथ, जैसे कोई व्यक्ति मल त्यागता है, खून त्यागता है, कुछ कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ऐसे ऐसे निकल के बाहर निकलता है रोते हुए, खून में लथपथ, कितनी हिंसा देखी बेचारा, ताप ही ताप। उसके बाद पूरा जीवन क्लेश ही क्लेश, आदि बौद्धिक आदि देविक आध्यात्मिक क्लेश, तीन ताप उसको सताते हैं, तरह तरह के पापों से वो पीड़ित है। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते ही सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है, सारे क्लेशों से छुटकारा मिल जाता है। भागवत में तीसरे स्कंद में बताया गया है, जो भक्त हरि नाम ले रहा है, चाहे उसे अपराध भी क्यों ना हो रहे हो, यमदूत उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, सपने में भी वो यमदूतों को नहीं देखेगा। इस हरि नाम में इतनी शक्ति है, इतना शुभ कार्य है। और हम सब जानते हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कृपा से जगाई मदाई का उद्धार होगा। जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे तो सभी देवतागण ऊपर से देखते थे, और जब महाप्रभु थोड़ा विश्राम करते थे तो सभी देवतागण अपने घर में जाके फिर विश्राम करते थे। तो एक बार ऐसी सब देवतागण गौरांग महाप्रभु का कीर्तन देख रहे थे और जगाई मधाई का उद्धार हो गया। तो यमराज जी ने अपने सेक्रेटरी चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त बताओ इनका क्या रिकॉर्ड बचा है। चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड चेक किया, हैरान होकर बोला, अरे प्रभु इतने पाप किए हैं इन्होंने, इतने पाप किए हैं, लाखों 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 पाप किए हैं, मैं ओवर टाइम काम करता रहता था और इतने पाप किए हैं, सारी फाइलें भर गई, गणना से बाहर, सारे कंप्यूटर हार्ड डिस्क फुल, सब कुछ, कोई मेमोरी नहीं बची, कुछ नहीं बचा, इतने इतने पाप और अब सब खत्म, सारे पाप खत्म, सब फॉर्मेट हो गया एकदम। जब यमराज जी ने यह सुना, बोले महाप्रभु की इतनी अहेतुक कृपा। सुनते ही यमराज जी अपने रथ पर मूर्छित हो गए। आप में से कोई भी मूर्छित नहीं हुआ अभी तक। यमराज जी का हृदय पिघल गया और रथ पर मूर्छित हो गए, और वहां पर सभी देवतागण गौरांग महाप्रभु कीर्तन का आनंद ले रहे थे। उनको मालूम चले हमारे प्रिय मित्र यमराज जी की यह स्थिति हो गई, वो मूर्छित है, भाग कर गए सब उनके रथ पर। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उनके कान में क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब यमराज जी ने हरे ध्वनि सुनी, उछल पड़े और पागलों की तरह नाचने लगे, जोर जोर से नाचने लगे। अब यमराज जी नहीं नाच रहे, नाचते नाचते लौट रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यमराज जी चिल्लाएंगे सुनो क्या होगा हा? और यमराज जी अकेले नहीं नाच रहे, यमराज जी के पार्षद, यमराज जी के पार्षद कौन है, यमदूत, कितने भयंकर होते हैं, वो भी पागल होकर नाच रहे हैं। और जो चित्रगुप्त हैं वो तालियां बजा रहे हैं, शिव जी लगभग नग्न हैं और जटाओं के साथ खूब नाच रहे हैं, साथ में उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी नाच रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भी कृष्णामृत का पूरा प्रेमास्वादन करके नाच रहे हैं, और उनके साथ बहुत बड़े बड़े गंभीर मुनि, भृगु ऋषि, कर्दम मुनि, वो भी पागल होकर नाच रहे हैं। जब नारद मुनि ने ये देखा भी हो क्या गया है, सब नाच रहे हैं और जगाई मधाई का उद्धार हो गया है, इतनी बड़ी कृपा, नारद मुनि ने अपना वीणा फेंका और जमीन पर लौट कर जोर जोर से रोने लगे, महाप्रभु की इतनी बड़ी कृपा। इंद्र जो थे उनकी हजारों आंखें थी, इतने हजारों आंखों से इंद्र प्रेमाश्रु बहाने लगे, और सुखदेव गोस्वामी भी रो रो कर बोल रहे हैं, जगाई मधाई। सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण, सबके सब नाच रहे हैं। तो देखिए ये है चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, जगाई और मधाई जैसे पापियों के लिए सारे पापों को नष्ट कर दिया। ये हरिनाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है। द्वारका महात्म्य में बताया गया है, अगर कोई भगवान के सामने ताली बजाकर नाचता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे क्या हो मालूम है, बताए गए हैं हर एक बद्ध जीव के शरीर में पाप के पक्षी होते हैं। जब किसी पेड़ पे कोई पक्षी बैठा होता है उसको करके उड़ाते हैं, इसी ढंग से अगर हम ताली बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो जितने भी हमारे शरीर के पाप के पक्षी होते हैं सबके सब उड़ जाते हैं। अक्सर हम ये सब जाते हैं संगीतम में बताते हैं, हम आगे कुछ चीज और ऐड कर देते हैं, ये पक्षी उनके ऊपर जाके बैठते हैं जो ताली नहीं बजाते हैं। ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा नहीं गया, लेकिन डराने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, फिर सब ताली बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना लिखा गया है कि जो ताली बजाते हैं उसके शरीर से सारे पाप के पक्षी उड़ जाते हैं। तो हरि नाम की महिमा, सारे के सारे पाप। हरि नाम की एक खासियत है, विशेषता है, केवल पाप ही समाप्त नहीं होते। ब्रह्म नारदीय पुराण में बताया गया है कि एक हरि नाम से इतने पाप समाप्त हो सकते हैं जितने कि हम कर भी नहीं सकते। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हमें निरंतर हरि नाम लेना पड़ेगा। यानी कि एक बार ही हरि नाम ले लिया, पाप तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हमें निरंतर हरि नाम लेना पड़ेगा। तो ये हरि नाम की विशेषता है, और किसी विधि में ये खासियत विशेषता नहीं है। तो ये था भव महादावाग्नि निर्वापणम। जब हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे क्लेशों से हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो गया है। हम इसका अपना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जब से हमने हरि नाम लेना शुरू किया, जब से हम हरि नाम हम माला करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जीवन कितना सरल हो गया। सरल हुआ कि कॉम्प्लिकेट हुआ है? सरल हुआ है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो दीक्षा के समय एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम गुरु के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम इसी जीवन में जल्दी से जल्दी शुद्ध भक्त बनेंगे। अगर हम अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो सारे के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो भक्ति करते हुए भी ये क्लेश हमें सताते रहेंगे। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हरि नाम लेना जीव की एक सनातन स्थिति है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं तो ये हमारी मुख्य सेवा है। बाकी जितनी भी सेवाएं हैं इस सेवा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में जब जाएंगे तो हरि नाम बैकग्राउंड में आ जाता है। मुख्य सेवा राधा कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, और बैकग्राउंड में हरि नाम होता है। जैसे कि सब गोपियां मक्खन बनाती हैं, तो मक्खन बनाती हैं साथ साथ में क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। लेकिन अगर कोई साधक यहां पर वो व्यवहार करना शुरू कर दे कि सेवा करते करते हरि नाम ले, नहीं। हरि नाम हमें बहुत ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। ये 16 माला का जप बहुत ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। ये हमारी सबसे प्रमुख सेवा है, और जितनी भी सेवाएं हैं वो इस सेवा को सपोर्ट करती हैं। तो हम वास्तव में भव महादावाग्नि निर्वापणम से हमें इससे मुक्ति पानी है, सारे पापों से मुक्ति पानी है, सारे क्लेश जो हमें मन हमारे मन और हमारे शरीर को सताते रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमने दीक्षा के समय गुरु को वचन दिया था उस पर हमें खरा उतरना पड़ेगा। अगर उस पर हम खरा नहीं उतरेंगे तो क्लेश हमें सताते ही रहेंगे। दीक्षा लेने के बाद, जैसे कल मोहन बाबू कह रहे थे, पाप भी अपराध का रूप ले लेते हैं, और अपराध पाप से हजारों गुणा ज्यादा गंभीर है। अपराध, अगर दीक्षित भक्त कोई पाप करता है तो अपराध बन जाता है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, तभी हम इससे मुक्ति पाएंगे। अन्यथा लोग कहते हैं मैं तो हरि नाम ले रहा हूं, पता नहीं मन शांत फिर भी नहीं हो रहा, दीक्षा ले ली तभी परेशान हूं। तरीका हमारे में गड़बड़ है, क्योंकि हम सही ढंग से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हम सुबह सुबह जो क्या प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नल लीड़ो का प्राणाय कारुण्य घना घनत्व प्राप्त कल्याण गुणान वास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इस संसार की तुलना दावाग्नि के साथ की गई है, यानी जंगल की आग के साथ। यहां भी उसको महादावाग्नि बताया गया। इसको शांत केवल गुरु की कृपा से ये शांत हो सकती है। और गुरु की कृपा क्या है, गुरु के निर्देश। और गुरु के निर्देश क्या है कि ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। अगर कोई साधक ये 3 कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बहुत सुखमय होगा। अगर इन 3 कार्यों में कहीं छिद्र है तो उसके जीवन में कठिनाइयां होंगी। तो हमें, अगर हम वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। यानी कि जिस ढंग से एक सफेद कमल चंद्रमा की किरणों के स्पर्श के द्वारा खिलता है, ये हम सबके लिए कविता के समान है। शहर में रहने लोगों ने कभी देखा ही नहीं सफेद कमल, ना देखा किसी ने? शहर में दिखाई देता है, कहीं देता नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, मान ले बात चाहिए, ये चंद्रमा की किरण जब सफेद कमल को छूती हैं तो वो खिलता है। इसी ढंग से हरि नाम चंद्रमा की किरणों के समान है और जब ये हृदय को छूता है तो सब सब मंगलकारी हो जाता है, यानी कि हरि नाम संकीर्तन की परम विजय हो क्योंकि ये सर्व मंगलकारी है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि किसी भी वस्तु को किसी भी घटना को सर्व मंगलकारी कब बताया जाता है, चार परिस्थितियों में वो ऑल ऑस्पिशियस सर्व मंगलकारी बनती है। जिन लोगों ने भक्ति शास्त्र किया उनको याद होगा या भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो सर्व मंगलकारी करने की चार परिस्थितियां क्या है? नंबर एक, इससे सबका लाभ हो। नंबर दो, इस सबको आकर्षक करे। नंबर तीन, इसमें इससे अच्छे गुण उत्पन्न हो। और नंबर चार, इससे परम कोटि का आनंद प्राप्त हो। तो ये चार परिस्थितियों से वो घटना वो वस्तु सर्व मंगलकारी बन जाती है। क्या? सबको, सबके लाभकारी हो, सबको आकर्षित करे, उत्तम कोटि का आनंद प्रदान करे, और चौथा क्या है? अच्छे गुण विकसित हो। तो हम देखते हैं कि हरिनाम संकीर्तन से ये सारे के सारे लक्षण है। निमाई पंडित गया में जाने से पहले बहुत प्रगाढ़ पंडित थे और सब बहुत बड़े बड़े तर्क करते थे। पिता का श्राद्ध करने के लिए जब वो गया में गए और गया में उनकी भेंट ईश्वरपुरी पाद से हुई और जब वहां से वो वापिस आए तो बिल्कुल बदले हुए थे। उन्होंने दोबारा से अपना टोल, स्कूल को टोल बोलते थे, शुरू किया। और विद्यार्थी भी थे उनके, वो भी चाहते थे कि चलो अब दोबारा से संस्कृत तर्क और दर्शन पढ़ेंगे। तो उन्होंने निमाई पंडित को बोला पढ़ाओ, लेकिन जब भी निमाई पंडित पढ़ाना शुरू करते थे वो पढ़ा नहीं पाते थे। क्यों? जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करते थे उनके सामने एक श्याम सुंदर वर्ण का किशोर आ जाता था जो कि बंसुरी बजाता था। ये देखते ही निमाई पंडित मूर्छित हो जाते थे। तो निमाई पंडित ने सभी अपने छात्रों से निवेदन किया, कृपया करके किसी और विद्यालय में चले जाइए, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। उनके छात्रों ने बोला आपको छोड़कर हम जा ही नहीं सकते, हम पढ़ना छोड़ देते हैं। निमाई पंडित ने बोला स्कूल बंद करने से पहले कम से कम अपने छात्रों को आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए कहे चलो कुछ कीर्तन करते हैं। तो उनके छात्रों ने पूछा कीर्तन कैसे करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो भक्ति मूर्तिमान निमाई पंडित केंद्र में बैठ गए और उनके सामने सारे छात्र उनको घेर कर बैठ गए और निमाई पंडित जी ने ताली बजाना शुरू किया। और ताली बजाते बजाते उन्होंने क्या बोला, हरि हराय नामा कृष्ण यादवाय नामा, यादवाय माधवाय केशवाय नामः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो निमाई पंडित के द्वारा ये पहला कीर्तन था। तो जब निमाई पंडित जी की मधुर वाणी और उनकी भावभंगिमा देखकर सभी छात्रों को, जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स बैठे थे, सबको भक्ति प्राप्त हो गई और सबको हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न होने लगे और सबको ये साक्षात्कार हो गया कि कृष्ण की सेवा में ही वास्तविक आनंद है। ये देखिए हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव। ऐसे शास्त्र, ऐसे छात्र जो कि सूखे तर्क में विश्वास करते थे, उनका पूरा का पूरा हृदय परिवर्तित हो गया और उनके अंदर इतने भाव उत्पन्न हो लगे कि जितने भी छात्र थे कोई रोने लगा, कोई हंसने लगा, कोई जोर जोर से नाचने लगा, कोई जमीन पर लौटने लगा और पूरे पूरे स्कूल में उथल पुथल मच गए। तो बाहर के लोग आने लगे भी क्या हो रहा है, ये स्कूल है क्या है, सब नाच रहे हैं, रो रहे हैं, कूद रहे हैं। और उसके बाद सबने देखा कि निमाई पंडित का ये कमाल है। तो इस ढंग से जब कोई कीर्तन करते हैं तो सबको आकर्षित करता है। आप भी देखते हैं, हम सड़क पे जाते हैं, कीर्तन करते हैं, सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। विदेशों में भी जब कीर्तन होता है लोग रुक जाते हैं, ये क्या हो रहा है, लोग इतने खुश क्यों हैं, ये क्यों नाच रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से गुजरे, सारे के सारे पशु भी आकर्षित हो गए। हाथी, शेर और चीता और हिरण, सबके सब इकट्ठे आ रहे हैं और सबके सब नाच रहे हैं। तो परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, ये सबको अपने प्रति आकर्षित करता है। जब हम नाचते हैं तो हाथ खड़ा करके नाचते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? आचार्यगण बताते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा अपने पिता को अपने प्रति आकर्षित करना चाहता है तो क्या करता है, हाथ खड़ा होकर छोटा बच्चा अगर नाचेगा और अपने पिता को बुलाएगा, पिता को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, पिताजी क्या करेंगे, गोद में उठा लेंगे, उसको प्रेम करेंगे। इसलिए जब हम नाचते हैं गौर निताई के सामने हाथ खड़ा करके, तो हम भगवान का नाम पुकार रहे हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर समझ लीजिए छोटा बच्चा ऐसे करके नाच रहा है और पिता उनको उठाए ना, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा जमीन पर लेट जाता है, रोना शुरू कर देता है। इसलिए भक्तगण कई बार एक्सटेसी में आते हैं, जमीन पर लौटते हैं और रोते हैं। तो फिर पिता क्या करेंगे, उसको इस बार उठाएंगे नहीं उठाएंगे? पक्का उठा देंगे, जरूर उठा देंगे, उसकी हालत उनसे देखी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आज रजौरी गार्डन में कीर्तन है सब भक्त लोग लेटना शुरू करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। धाम में जाएं, कहीं मायापुर में जाएं, वृंदावन में कार्तिक में जाएं, तब ठीक है। अब इतना ठीक है, हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है, इससे केवल भगवान ही प्रसन्न नहीं होते, जब भक्तगण नाचते हैं, जोर से उछलते हैं, नाचते हैं, इससे क्या होता है? नाचने से जितने भी पृथ्वी पर अमंगल है वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, पूरे पृथ्वी का अमंगल समाप्त हो जाता है। और जब भक्त लोग अपनी दिशा, अपने अलग अलग दिशाओं में देखते हैं ऐसे, तो देखने मात्र से 10 दिशाओं में जो भी अमंगल है वो समाप्त हो जाता है। और जब भक्त लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं, तो हाथ ऊपर करने से क्या होता है, जितने ऊपरी लोकों में अमंगल है उसको वो धकेल देते हैं पीछे। तो ये हरिनाम संकीर्तन की महिमा है। हरिनाम संकीर्तन की परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये है श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। ये जो हरिनाम संकीर्तन है सभी विद्याओं का जीवन है। उसी लोकनाथ स्वामी महाराज लेक्चर में बता रहे थे, विद्या वधु जीवनम, द लाइफ ऑफ द वाइफ ऑफ विद्या, लाइफ ऑफ द वाइफ ऑफ द विद्या। तो वधु है, इसका मतलब वर भी होगा। तो वधु बताया गया है विद्या को, और वर बताया गया है संकीर्तन को। साधारणतया वधु को वर के पीछे जाना चाहिए, आजकल ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन वस्तुतः वाइफ हस्बैंड को फॉलो करती है। यानी कि जहां संकीर्तन होगा वहां हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा। जब कोई संकीर्तन में भाग लेते हैं तो उसके हृदय में भक्ति देवी उत्पन्न होती है। भक्ति देवी का संचार, भक्ति अपने दो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ, तो उसको ज्ञान प्रकट होता है। बताया गया है चैतन्य चैतन्य आदि लीला में, जब ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, तो ईश्वरपुरी पाद ने क्या बोला, मूर्ख तुम्हें तुम्हार नाहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदाई मंत्र सार। ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, निमाई पंडित को बोला कि तुम मूर्ख हो, मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा नाहीं वेदांत अधिकार, तुम्हें वेदांत अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, तुम केवल कृष्ण मंत्र का जप करो, यही सारे मंत्रों का सार है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई वेदांत का केवल शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए अध्ययन कर रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहा, तो एक केवल माया है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई ज्यादा विद्वान नहीं है और केवल हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तो उसको अपने आप ही सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक श्लोक में बताया गया है, ऋग वेदो अथा यजुर्वेदा साम वेदा अपि अथर्वना अधितास्तेन येनोक्तम हरिर इति अक्षर द्वयम्। जो व्यक्ति दो शब्द बोलता है, कौन सा, हा रि, जिसने हा और री बोल दिया, उसने क्या किया है, सारे के सारे वेद पढ़ लिए। इतनी महिमा, जिसने हरी 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 हरी, जिसने हरी बोल दिया, उसने क्या किया, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद पढ़ लिए। वाह, क्या बात है। आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, फिर आप हमें क्यों बोलते हैं एक घंटा पढ़ना चाहिए, क्या बोलेंगे, हरी हरी हो गया काम, अरे चारों वेद पढ़ लिए। तो प्रभुपाद आगे फिर वार्निंग दे रहे हैं, सहिज्यों से सावधान, सहिज्यों से सावधान, क्योंकि हालांकि ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु बोला, मूर्ख तुम्हें तुम्हार वेदांत ना अधिकार, लेकिन साथ में ईश्वर पाद ने यह भी बोला चैतन्य महाप्रभु को कि तुमको, आपको श्रीमद भागवतम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवतम के ध्यान पूर्वक पढ़ने से हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होते हैं। भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, हरि नाम की स्वरूप शक्ति है हरि कथा। जब तक हम भागवतम को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, हम हरि नाम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, हरि नाम से आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए भागवतम का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का पाठ अति आवश्यक है। विद्या वधु जीवनम, जितने भी जो विद्या है उसका ये जीवन है। वास्तव में ये हरिनाम संकीर्तन यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता। जब हम भगवान के धाम में भी ये हरिनाम संकीर्तन होता है, और हरिनाम संकीर्तन के मुख्य दो जो उपकरण हैं वो खोल और करताल है। गोलोक वृंदावन में भी मृदंग है, लेकिन वो मृदंग थोड़ा सा अलग है, वो मृदंगम कहलाता है, और वो लकड़ी का बना होता है, और जो छोटा हिस्सा है वो थोड़ा और बड़ा होता है। तो श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं ये भी संकीर्तन करती हैं। क्या क्या बजाती हैं? विशाखा सखी मृदंगम बजाती है, ललिता सखी क्या बजाती हैं? वीणा। तुम विद्या जी वीणा बजाती हैं और सप्तसा बजाती हैं। इंदुलेखा जी मंजीरा बजाती हैं, चित्रा सितार बजाती हैं, चंपक लता जी सारंगी और तंबूरा बजाती हैं, रंग देवी जी घंटा बजाती हैं और सुदेवी जी करताल बजाती हैं। तो इस संकीर्तन वहां भी चलता है। और बहुत कुछ है, समय हो रहा है, इसको वाइंड अप करेंगे। आनंदम बुद्धिवर्धनम, चैतन्य महाप्रभु पूरे प्रेम का सागर लाए। आनंदम बुद्धि, आनंदम आनंद, अम्बुदी का मतलब सागर, वर्धनम सागर अपने आप में आता है, असीमित है, आनंद का असीमित सागर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये संकीर्तन आंदोलन की प्रकृति है। संसार में जो सागर है अगर वो बढ़ता है तो सुनामी आ जाती है, सर्वनाश हो जाता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम सागर बढ़ता रहता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कोई साधक इस चैतन्य महाप्रभु के प्रेम सागर में डुबकी नहीं लगाता तो वो अनर्थों के सागर में डूबा रहता है। इतना बड़ा सौभाग्य, किसी ने इसका लाभ नहीं उठाया तो कल्पों कल्पों तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो इस बाढ़ में हमने अपने आप को डुबो देना चाहिए। एक ऐसा सागर है जो बढ़ता ही जाता है, और इसकी ऐसी प्रकृति है, इस संकीर्तन को जितना रोका जाए और बढ़ता है। चांद काजी ने इसको रोकने का प्रयास किया और बढ़ गया। हम देखते हैं विदेशों में, रशिया में इसको बार बार इसका प्रयास किया था रोकने का, और बढ़ता जा रहा है। उस दिन गुरु महाराज आए, वो बता रहे थे ये हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन सोसाइटी एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जो कि फाउंडर आचार्य के जाने के बाद और इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की प्रकृति है। श्रीला प्रभुपाद जी ने 108 केंद्र स्थापित कर गए, अब लगभग 500 से भी ज्यादा केंद्र हैं, और आगे भविष्य में आप सब लोग मिलकर और केंद्र बनाएंगे। ये रुकेगा नहीं, आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के विरोध में संकीर्तन किया था तो कल प्रभु जी बता रहे थे उसमें कितने भक्त आए थे, 1,00,000। कोई पूछेगा नवदीप कितनी जनसंख्या थी क्या, 1,00,000 भक्त, 1,00,000 बहुत होते हैं 1,00,000। ये हमारी तरह नहीं है, हम लोग बोलते हैं 100 भक्त आए, कितने थे, 600-800। हम ऐसे ही कई बार बोलते बहुत बहुत लोग थे, कितने लोग थे, 4-5,00,000 ऐसे बोल देते हैं। ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, ऐसे नहीं कि अंदाजे में बात की जा रही है, थे 1,00,000, 1,00,000 भक्त थे। तो कहां से आए ये सब, बताया गया है चैतन्य भागवत में, ऊपरी लोगों से सभी देवतागण मनुष्य बनकर आए थे, सभी देवतागणों ने संकीर्तन में भाग लिया। अच्छा, वे संकीर्तन में भाग ले रहे थे, सबके हाथ में मशाल था और घी था, मशाल लेकर सब चल रहे थे और घी भी डालते जा रहे थे उसमें, और मुंह से बोल रहे थे और साथ में ताली भी बजा रहे थे। अरे, एक हाथ में मशाल, एक हाथ में घी, मुंह में हरि नाम और ताली भी बजा रहे हैं, तो क्या हुआ था? इस संगीतन की इतनी विशेषता है कि सभी के सब चतुर्भुज हो गए थे, सभी के सभी चतुर्भुज हो गए, हाथ में मशाल घी और साथ में ताली भी बजा रहे हैं और हरि नाम ले रहे हैं। और जितना चांद काजी ने इसको रोकने का प्रयास किया ये और बढ़ा। तो इसलिए जब हमारे संकीर्तन में कुछ बाधा आए तो हमें समझना चाहिए यह बढ़ाने का अवसर है, रुकना नहीं है, यह बढ़ाने का अवसर है, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, इससे बढ़ना ही बढ़ना है। भौतिक जगत में क्या होता है, काल के प्रभाव से हर वस्तु का नाश होता है, लेकिन जो अंतरंगा शक्ति है ये हमेशा विस्तार करती रहती है। भगवान के गुण, भगवान के ऐश्वर्य हमेशा विस्तार करते रहते हैं, भगवान के नाम की महिमा हमेशा विस्तार करती रहती है। एवर एक्सपेंडिंग, एवर डायनेमिक, ये इंटरनल पोटेंसी है भगवान के, इसको कोई नहीं रोक सकता। दिखने में लगेगा कुछ बाधा है, वास्तव में बाधा नहीं है, वो भगवान की तरफ से एक सिग्नल है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, इसको पुश करो तो ये बढ़ेगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, प्रत्येक कदम पर ये हमें आनंद देगा। इस हरि नाम के अंदर ही सब कुछ है, जैसे कल्पक जी बता रहे बहुत सुंदर रूप से, इसी जप माला के अंदर पूरा आध्यात्मिक जगत छिपा हुआ है, और जब हम ध्यान पूर्वक नाम लेंगे तो इसी नाम से हम भगवान के रूप के दर्शन करेंगे, और रूप से हम भगवान के गुणों को पहचान पाएंगे, और गुण से हम भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे। इसी नाम के माध्यम से प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादना, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक कदम पर यह हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन कराएगा। अगर हम हरि नाम नहीं लेते हैं तो क्या है इस भौतिक जगत में, पदम पदम यत विपदम, पद पद पर खतरा है, लेकिन हरि नाम लेने क्या कर रहे हैं, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, प्रत्येक पद पर हम पूर्ण रूप से अमृत का आस्वादन करेंगे। सर्वात्मस्मरणम, ये हरि नाम क्या करता है, लोकनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे, आत्मा का पूरा अभिषेक कर देता है, सर्वात्मस्मरणम पूरी आत्मा का स्नान करा देता है, नक से लेकर शिखा तक, यानी कि पूर्ण रूप से अमृत में डुबो देता है, यानी पूर्ण रूप से शीतल कर देता है। जो हमारा बुखार है इस भौतिक जगत को भोगने का, पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। सर्वात्मस्पनम परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो ये हरिनाम संकीर्तन है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और जैसे कल चर्चा चल रही थी कि इस हरिनाम को हम गाएं तो अच्छी ताल में गाएं, ये भी आवश्यक है। हालांकि अच्छी धुन और ताल होना इसके लिए प्रीरिक्विजिट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको गाना आवश्यक है। कथा आती है पुराणों में, अभी जब नारद मुनि ने अच्छे ढंग से इस संगीत शास्त्र को नहीं सीखा था, तो एक बार ही नारद मुनि ऊपरी लोकों में गए और ऊपरी लोकों में जाकर गुणगान करने लगे। उनके शब्द तो ठीक थे लेकिन उनको संगीत का पूरा ज्ञान नहीं था, सुरताल ठीक नहीं थी। तो सुरताल ठीक नहीं थी तो क्या हुआ, वहां जितने देवता गण इकट्ठे हुए थे और सुर के देवता स्वयं सुर वहां पर उपस्थित थे, नारद मुनि के गलत सुरताल को सुनकर सबके सब बड़े क्रूप हो गए, सब बड़े विकृत हो गए, सबके हृदय में पीड़ा हो गई, अरे क्या कर रहे हो। तो भागकर लोग देवतागण नारद मुनि के पास आए, कृपया करके बंद करो, देखो सबकी क्या हालत हो रही है, सबके हृदय में पीड़ा हो रही है, सब बड़े क्रूप हो गए हैं, विकृत हो गए, इतने सुंदर लोग सबकी क्या हालत हो गई है। तो नारद मुनि भी थोड़े से शर्मा गए और नीचे गए, सरस्वती माता से प्रार्थना की, संगीत विद्या सीख के आए और फिर ऊपर गए, और फिर उन्होंने सही सुर और ताल में गाया तो जितने भी क्रूप हुए थे, बदसूरत हो गए थे, सबके सब अपने सुंदर रूप में वापिस प्रकट हो गए। और उसके बाद नारद मुनि पूरे विश्व के सबसे बड़े प्रचारक और गायक हैं। तो इसलिए जब हरिनाम संकीर्तन ले तो हम भी कोशिश करें, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बहुत पंडित बने, अच्छे ढंग से संगीतज्ञ बने, लेकिन उसको सही सुर और ताल में गाएं अपनी क्षमता को जानते हुए। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम लेते हैं, संकीर्तन के भाग लेते हैं, महाप्रभु ने कभी भी हरिनाम को मास्टर नहीं किया, यानी उसके स्वामी नहीं बने, हमेशा उन्होंने हरिनाम की सेवा की है, तब यह हरिनाम हमें पूरा लाभ देगा। हमें हरिनाम का स्वामी नहीं बनना, हरिनाम का सेवक बनना है। स्वामी बनने का अर्थ ये है कि हम संकीर्तन में भाग लेते हैं, हरिनाम के द्वारा हम अपने आप को आनंद देने का प्रयास करते हैं, इसको भोगते हैं। हरिनाम के द्वारा हम दिखाते हैं, देखो हम कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, या हरिनाम जब जप करते हैं तो ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, किसी भी ढंग से जप कर लिया, अपनी सहूलियत अपने सुख के अनुसार हम हरिनाम लेते हैं, तो हरिनाम को भोग रहे हैं, हरिनाम के हम स्वामी बने हुए हैं। इससे हरिनाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, हमें हरिनाम का सेवक बनना है। और हरिनाम की हम सेवा कर सकते हैं ध्यान पूर्वक जप करके। जब तक अपने चित्त को हम हरिनाम में नहीं लगाएंगे, जब तक चित्त हरिनाम के संपर्क में नहीं आएगा, चित्त शुद्ध कैसे होगा। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक हम हरि नाम लें और बहुत उत्साहपूर्वक वो प्रार्थना करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम संकीर्तन में भाग लें, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। तो इस ढंग से जब हरि नाम की सेवा करेंगे तो हम निश्चित रूप से हरि नाम के ये जो सात प्रभाव हैं इसका हम अनुभव कर पाएंगे, और इन सात प्रभावों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए जिससे कि हम हरि नाम के प्रति और रुचि उत्पन्न कर सके और इसको लेते लेते हम प्रेम की अवस्था को हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण हरि नाम संकीर्तन की, चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य महाप्रभु की, हरि नाम प्रभु की, निदाई गौर प्रेमानंदे सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।